अगली अलामत क्या है कि जाबिर हुक्मरान होंगे। चलिए हुक्मरानों को साइड पे करें, अल्लाह हिदायत दे। अगली लिख ले, ये हमसे मुतल्लिक है, फहाशी आम होगी आज। और इसी के साथ अगली बोल दो, औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आरियातुन कासियातुन या कासियातुन आरियातुन, पहनेगी कपड़े लेकिन जिस्म नहीं छुपेगा। कभी देखा है ऐसा कोई कपड़ा आपने? दुल्हनों के ब्लाउज देखे, हांडी नेक देखा, शोल्डर डाउन देखे, टाइट्स देखी, रखने खुले देखे, आप बताइए। अल्लाह के नबी सल्लम अगर हम औरतों को ऐसे देखें क्या सोचेंगे? ये फातिमा की बहनें हैं, ये खदीजा की बेटी हैं। और मुझे चंद दिन पहले एक जुमला सुनने को मिला, लिखा हुआ था, पढ़ा मैंने, कि औरतें तो चलें जिस हाल हुलिये में निकलती हैं वो तो है ही, हैरत ये है कि उन घरों में मर्द भी होते हैं और उनके माथे पे बल तक नहीं आता, कान पे जूं तक नहीं रेंगती। सच बताइए, आप मेरे सामने जितनी सिस्टर्स बैठी हैं, 40+, 50 60, आप जब टीनेजर थी उसमें और आज की टीनेजर बच्ची में फर्क है? आपके भाई की घूरियां आज की बहनों को मिलती हैं? आज की गैरत और कल की गैरत में फर्क है? बच्ची को बाहर नहीं जाने देते थे, दरवाजा खोलना है, तुम किधर आई, चलो अंदर। जब फोन नया नया आया, इजाद हुआ, बेल होती रहती थी, जब तक घर का कोई मर्द नहीं उठाता था फोन की बेल बजती थी। आज की बच्चियों कहीं हाउ स्टूपिड। देखिए मैं कोई तकाबुल नहीं कर रही, कॉन्सिक्वेंसेस देख लीजिए, इसके असरात क्या आ रहे हैं। पहले तो कोई कहीं जाकर कुछ गलत काम करता था, आज कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये सब कयामत की निशानी है। फिर अगली अलामत के इल्म का खात्मा होगा और जहालत आम होगी। और आज देखिए बज़ाहिर पढ़ने का बहुत दौर दौर है, डिग्रियां, बच्चों का स्टेटस, दूसरे मुल्कों में जाना है, दुनियावी तालीम भी है लेकिन वो भी तालीम नहीं है, वो सिर्फ एक फन है, डिग्री चाहिए। और दीन को देख लीजिए, मेरे पास एक क्राइटेरियन है बस, अपने आप को भी परखने का और आपको भी। जब कुरान पाक पढ़ा जाता है, सादा कुरान, आप पढ़ती हैं या सुनती हैं, चाहे वो तरावी में सुने, हरम में सुने, तो कितना समझ आता है। किसको हम में से फातिहा से नाज तक पूरा कुरान समझ आता है? खुश नसीब है आप, अपनी बेटियों को एक तोहफा दें कुरान से पहले। यानी जिंदगी जो एक शुरू होती है ना, उसके अमली जिंदगी के शुरू होने से पहले उनको एक दफा तर्जुमे से कुरान पढ़ा दें। सच्ची बता रही, इतनी आजकल बच्चियों के साथ, बेचारियों के साथ नाकाबले कह लीजिए कि एतबार किस्म की सरकमस्टांसेस हैं, तीन में से हर एक शादी टूट रही है, और मुझे तो लगता है दो में से एक। क्यों? नफसानियत, अल्लाह जाने क्या शर फैला हुआ है। अव्वल शादियां होती नहीं बच्चियों की, बूढ़ी हो जाती हैं बच्चियां, और जिसकी होती भी है कुछ महीने की बात है, और जो शादियों पे तईशात है, जो खर्च है किसी की बात है, वो कहते हैं कि बरकत उठ गई है हमारी शादियों से। ना माहौल ऐसा होता है कि रहमत के फरिश्ते आए, ना तौर तरीके, और वो जो फोटो सेशन वाला है सारी गैरत वो ले जाता है। और लड़कों से कभी आपने दुल्हनों का मेकअप होता सुना था? और हम भी तो बड़े ही हुए हैं ना, हर दौर में दुल्हन तैयार होती थी, ये भी बता दो, चाहे वो हमारी नानियां दादियां लाली लगा के इधर इधर करके आंखों पे मुंह पे एक ही सुर्खी जी से लगा देती थी, या आपके दौर में भी कोई पार्लर का रिवाज शुरू हो गया होगा। लेकिन जो आज हद खत्म हो गई है, कभी थी? आप कहते कि औरत से भी मेकअप कराते हुए बंदा कितना क्लोज होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, और एक मर्द, गैर मर्द, कहाँ कहाँ हाथ नहीं लगता होगा, और वो कैसे कैसे नहीं उसको देखता होगा। उसको तो हक हासिल है ना कि देखे और बताए, इधर करो और उधर करो। और जो रही सही उस औरत की जो इज्जत रह जाती होगी, वो फोटो सेशन वाला ले जाता है, ये कयामत है। और जो ड्रेस कोड है, और बाप नहीं है, मर्द नहीं। मैं सोचती थी ये सोसाइटी के किसी कोई कॉर्नर पे बैठा कोई लीड तबका होगा, जो समझे ऊपर झाग है उनका। लास्ट मंथ मुझे किसी ने नाम कैसा बताया, उनकी अपनी फैमिली में उनकी फलां की भांजी भतीजी एक मर्द से तैयार हुई, मतलब वो गवाही दे रही थी ये हो रहा है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है। अगर कभी आपको फैसलाबाद वालों को मौका मिले, आज इस हॉल में बैठ के नियत करें, और बच्चियां तो इसका तसव्वुर नहीं कर सकती क्या हुसन रहना। दूसरे दिन शादियां टूट रही हैं, चौथे दिन शादी टूट रही है, क्या नहुसत पड़ जाती है। शादी हो रही है, मगरब की अजानें हो रही हैं, खाना खोल दो। पहले दुआएं थी, पहले बरकतें थी, रहमतें थी, खानदान के छोटे छोटे गरीब सारे रिश्तेदारों को इज्जत दे के बुलाया जाता था। आज उन बेचारों की अप्रोच ही नहीं, जिस वक्त हमने शादी करनी है जहाँ दूर हॉल में करनी है, वो गरीब रिश्तेदार कहाँ आएंगे। 5-10 हज़ार रुपये का उस वक्त रिक्शा या टैक्सी लेके कौन आए आपकी शादियों में। वो बेचारे कहते हैं भाई यही से दुआएं ले लो। तो जरा सा सोचिए, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। और देखिए इसी के साथ अगली चीज लिख लें, जिनाकारी आम होगी जी, शराब हलाल समझी जाएगी, गाना बजाना रवाज पा जाएगा, रिश्तेदारी तोड़ी जाएगी और हमसाएगी बुरी होगी। क्या ये सब हमारे पास हो रहा। आपके अपने मुसलमान मुल्कों में शराब बिकती है, शराब पी जाती है, शादियों में शराब चलने लगी, हैप्पी आवर, गोरों की शादी का ये एक मशहूर टर्म थी हैप्पी आवर, यानी शराब के नशे में धुत होके फिर कोई नहीं पता कौन सी किसकी बीवी है, जिसको लेना ले जाओ, बस खुश होने का घंटा। ये बाहर की दुनिया में मुसलमानों की शादी में हैप्पी आवर आ गया है, पता नहीं वो उसमें बेचारे किस हद तक हैप्पी हो पाते होंगे, लेकिन ये टर्म मुस्लिम शादी में आ गई है। जो ना खूब था वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। और गाने बजाने के बगैर शादी होती, कहते नहीं म्यूजिक के बगैर नहीं होती। किसी दिन मैयत वाले घर में जो आखिरी रसूमात हों पीछे म्यूजिक चलाइए, क्योंकि गैदरिंग है, करिए उधर मिक्सिंग, जो कि आप अलग नहीं रह सकते शादियों में, तो फिर वहां भी हुई है उस दिन नहीं, क्योंकि उसे मेकअप नहीं किया होता, किस तरह सामने जाए एक दूसरे के। तो सोचिए रिश्तेदारी टूट रही है, हमसाएगी बुरी हो रही है, लोग अजनबी बन जाएंगे, झूठ बकसरत बोला जाएगा, झूठी गवाही दी जाएगी और बदअमली फैल जाएगी, लोग बखील हो जाएंगे। सच बताइए बुखल है। अपनी जात पे जो बंदा ज्यादा लगाएगा ना, उसके पास रिश्तेदारों या दूसरों को देने के लिए नहीं बचेगा। वो क्या कहेगा, मेरी तो अपनी नहीं बुरी होती। आज क्यों खास तौर पे हमारे अपने मुल्क में महंगाई का रोना, महंगाई है। हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं ना, हम बहुत दर्द खींचते हैं आपका। अभी स्पेशली ये साल में इतनी चीजें सामने आई, बिजली के बिल महंगे हो गए, एम्बेरेस ना हो सिर्फ देखिए इस वक्त भी कितनी लाइटें जल रही हैं, और आधी मैंने 3 दफा बंद कराई हैं। आप मैं आई थी तो मैं सोच के आई थी कि इस दफा तो कोई एसी हीटर नहीं लोग चलाते होंगे, क्योंकि सुना है कि लाखों में बिल आते हैं और खाना महंगा हो गया है। जिस दिन से आई हूँ ना, मैंने लोगों को बिजली कम इस्तेमाल करते देखा है और ना खाना कम दे, उतना ही है फर्क। पड़ता होगा तो चंद बीच के लोगों को पड़ता होगा। थोड़ा सा सोचिए किस तरीके से हम अपनी जात पे लगे हैं। फिर इस उम्मत मुस्लिमा में से बास लोग शिर्क में मुबतला हो जाएंगे। आपके मुल्क में है कोई शिर्की अमाज का एक कब्र, और लोग बाहर से सीधे सही आ रहे हैं, जब उस दरगाह के मेन डोर पे पहुंचते हैं तो यूं हो जाते हैं रुकू, ऐसे जाते हैं घोड़े की तरह, और जो ही फिर उससे बाद अंदर का दरवाजा जिसके अंदर कब्र है तो सजदे में जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। अल्लाह हमें हिदायत है, इसको पाक कीजिए शिर्क से, हर चीज से। फिर मस्जिद में गैर जरूरी नक्शो निगार और जेब व जीनत की जाएगी, और जितनी डेकोरेशन होगी ना तो किधर देन जाएगा, ये फनूस किसने बनाया है, ये छत किस कंपनी की है, ये शेंगली ये पंखे, अल्लाह की तरफ किसका ध्यान जाना है। आप फील करें ठीक है, साफ सुथरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन फैंसीनेस का एहसास लोगों को उधर भी दुनिया ही ले आता है। आज भी कितने लोग हैं जो मक्का मदीना जाके वो बत्तियां गिन के आ जाते हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक ये जरूरी है। फिर इसी तरह से सूद और हराम माल बकसरत खाया जाएगा। मुझे एक भी लफ्ज़ बोलने की जरूरत है इसमें, मुझे नहीं पता था कि अपने मुल्कों में भी अब वही शुरू हो गया जिससे जान छुड़ाने की कोशिश बाहर की दुनिया में हो रही थी, सूद पे कर्जे लो घर लो। मैं जब फ्यू ईयर्स अगो आई पाकिस्तान, तो एयरपोर्ट के रास्ते में बड़े बड़े बोर्ड्स थे लेकिन ऊपर बड़ी चीज कुछ नहीं लिखी हुई थी, लेकिन कुछ हिडन मैसेजेस थे। बेटी है, दुल्हन बनी हुई है, और बाप सर पे उसके हाथ रख के कहता है, अब तो ए बेटी तेरे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या ड्रामे का सीन है, क्या है। आगे गए तो बड़ा सा घर है और लिखा हुआ है, अब तो मैं अपने ख्वाब पूरे करूंगा, घर बनाऊंगा। जब दो तीन गुजरे तो फिर मैंने नीचे देखा एक बैंक, और नीचे लिखा, आइए हमसे कर्जे लीजिए। अल्लाह के नबी उस बंदे का जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिसके सर पे कर्जा होता था। और फिर कर्जे में इंटरेस्ट, ये तो और नाजायज बच्चा, मत कर्जों में पढ़िए। अल्लाह थोड़े में बरकत देगा इंशाल्लाह। कारोबार में औरतें भी शरीक होंगी, आज हो रही, हर काउंटर पे आपका औरत दिखेगी। स्याह खसाब इस्तेमाल किया जाएगा, कुरैश का खात्मा हो जाएगा, कुफार की तकलीद की जाएगी। कोई नहीं कर रहा ना आजकल। छोटा बच्चा जिसको ना अकल ना मत, वो बाहर के ब्रांड्स की बातें करता है। मुझे हैरत हुई, खाने की चीजें होती है ना, सीरियल्स हुए, अब जो बाहर रहते हैं उन्होंने तो खाना ही है ना, वो वहां से कितना को पाकिस्तान का मकई का आटा ले जाएंगे, कुछ भी लेंगे, वो उनके लिए आम बात है। और जो रहता है फिर उसको वो ठीक लगता है, यानी $2-3 का अगर एक सीरियल मिल जाए इट्स ओके। बड़ा महंगा हो गया 5-6 का। किसी ने बाहर वो देखा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये 3.5 या 4 हज़ार रुपये का एक सीरियल का डब्बा है। मेरी तो अकल गुम हो गई, मैंने कहा 4 हज़ार का सीरियल का डब्बा पाकिस्तान में लेता कौन है। कहते जाके आप दुकानों पर रश तो देखिए, नाम नहीं मैं लेती, बड़े बड़े स्टोर्स हैं ना, ट्रॉलियाँ भरी होती हैं, शायद 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा का बिल दे के आते होंगे एक दिन की ग्रोसरी का। ये सिर्फ ब्रांड्स है कि बाहर का इम्पोर्टेड। पिछले ट्रिप में मैं आई हुई थी, कहीं हम सफर में थे, रास्ते में कहीं रुके ना, जैसे गैस लेने, कुछ लें कुछ लें कुछ लें। अब मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड इधर की चीज़ें डरते हैं, नहीं खाते। एकदम मुझे नीचे बॉक्स एक बिस्किट दिखा, जो वहाँ हम खाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो। तो अब मुझे था कि ये वो इम्पोर्टेड था। मैं काउंटर पे आई ना, तो मैंने कहा कितने का है। नहीं नहीं आप क्यों पूछ रही, छोड़। मैं कि वैसे मैं तकाबुल करी, कहने लगे 900 रुपये का, इतना सा बिस्किट का। मैंने फौरन पकड़ा वापस रखा, मैंने कहा वहां जाके खा लेंगे, हमें नहीं खा। 900 रुपये का एक बिस्किट का डब्बा, अल्लाह अकबर कबीरा। तो ऐसी इम्पोर्टेड चीजों से आप भी इज्तनाब कीजिए, जो आपकी पूरे महीने की बैलेंस को खराब कर दे। जब कभी बाहर आएंगे वो खा लीजिएगा, हम खिला देंगे आपको। हमें तो इधर आके हमेशा देसी चीजें अच्छी लग रही होती है, लेकिन कहने का मतलब समझ है, अफोर्डेबिलिटी भी है फिर भी ना ले। क्यों? इसलिए कि ये गरीब मुल्क है। आपका 4 हज़ार एक सीरियल पे लगना, मेरा ख्याल है आपके घर में जो काम करती है मेड या ड्राइवर बाबा, मेरा ख्याल है उसका एक हफ्ते का पूरी ग्रोसरी आ जाएगी 4 हज़ार में। अल्लाह हमारे लिए आसानी करे। फिर आ गया जी जलजले बकसरत होंगे, सूरतें मसख होंगी और लोग जमीन में धंसाए जाएंगे, अल्लाह बचा के रखे। और आपको तो सूरतों के मसख होने का अज़ाब हदीस में किस चीज़ के साथ है, गाने बजाने के साथ। शक्लें बदल जाएंगी, जैसे पहले दौर में लोग बंदर बनाए गए थे ना, इस तरह ऐसा होगा। फिर इस तरह दिल का दौरा कसरत से होगा, हार्ट अटैक। अस्सलाम वालेकुम सिर्फ मारूफ लोगों को किया जाएगा। आज आप रात आते हैं इधर, मेरा हालत इधर भी, अब झाल पे जाए ना तो किसी को जाते हो कि ना सलाम करते, तो आपको पता क्या पहचाने या नहीं था नो कौन हो तुसी। कुरान को भीख मांगने का जरिया बनाया जाएगा, दुआ और तहारत में ज्यादती की जाएगी, ना अहल ओहदे संभाल लेंगे, गरीब अमीर हो जाएंगे, फलक बोझ यानी बुलंद इमारतें बनाने में मुकाबलेबाजी होगी। दिखती है दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग किस मुल्क में, अब उसमें बनेगी। अब वो कहते हैं हम उससे भी कुछ 4 इंच ऊंची करेंगे, ये चल रहा है पूरी वर्ल्ड में, अरब दुनिया में इस वक्त कंपटीशन है। किरतासो कलम का जहूर यानी लिखने पढ़ने का, ये प्रिंट मीडिया जो है ना ये बहुत आम हो जाएगा, अकल परस्त उस्ताद बन जाएंगे। इस पे तो मैं आपको 2-4 जुमले जरूर बोल दूं। देखिए पहला दौर था ना, लोग बड़े सिक्योर माहौल में बैठकर अपने उस्ताद से, जिसके इल्म पे जिसके तकवे पे उनको यकीन होता था, इल्म लेते थे। शरह सदर भी होता था बच्चे के लिए, माँ बाप उस वक्त शहर के सबसे अक्लमंद लोग थे, शागिर्द के लिए उस्ताद। आज क्या हो रहा है, ये टिकटॉक, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, इतने चाहने वाले, यूट्यूबर। कभी आपने ये लफ्ज़ यूट्यूबर पहले सुना था? चंद दिन पहले हम साथ थे किसी के, तो गाड़ियों की बात हो रही थी, फलां गाड़ी बड़ी महंगी बड़ी महंगी। तो जो बात कर रही थी उन्होंने कहा ये गाड़ी तो पाकिस्तान में सिर्फ यूट्यूबर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने कहा ये कोई नई टर्म निकल आई है? हमने साहूकार सुना, कारोबारी सुना, बिजनेस माइंडेड सुना, सनतकारों के नाम सुने, डॉक्टर्स के सुने कि पैसे वाले लोग होते हैं, ये यूट्यूबर कौन है? कहती उधर से पैसा आता है। एक बच्चे की बात सुन के मैं हैरान रह गई थी। बेटा बड़े होके क्या बनेंगे? कहा मैं यूट्यूबर बनूंगा। क्या? मैं वीडियोस बनाऊंगा, फिर मेरी वीडियोस को लोग देखेंगे, पैसे मिलेंगे। है आज ये कहानी घर घर की। व्लॉग का नाम कभी सुना था आपने? ब्लॉग का नाम सुना था? ये क्या बला थी? माँ बहनों को अपने डे टू डे लाइफ में स्क्रीनों से दिखा कर पैसे कमाना। आज ये की, आज उधर गए, ग्रोसरी की, अम्मा जी ने ये लिया वो दिया, आओ बैठे हैं आपको दिखाते हैं। जितना अल्लाह का हुक्म से हम लोग सफर करते हैं, अगर हम ये दिखाने लगे और लोगों से पैसे लेने लगे तो मेरा अल्लाह कि हमारी मस्जिद कब की बन चुकी होती, और हमें नहीं बनानी ऐसे, क्या बरकत होगी। आप अपनी घर की औरतों को डे टू डे लाइफ दिखा रहे हैं। घर के अंदर एक मर्द नहीं आ सकता था, बाहर ड्राइंग रूम में बैठता था, गेस्ट रूम का दरवाजा हमेशा घर से बाहर था, बेटे के दोस्त अंदर आ नहीं सकते थे। आज अपनी घर की औरतों को दिखाते हैं कि देखो हम ये कर रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम अल्लाह के घर जाकर अपनी फोटो बना बना के हम भेजते हैं। सोच लीजिए फिर जमाना करीब हो जाएगा। आपको नहीं लगता साल कैसे गुजर जाता है? वक्त जल्दी गुजर रहा है। बाजार करीब करीब होंगे, लॉन्डी अपने मालिक को जन्म देगी। हमारे वालिद इस हदीस पे हमेशा बात करते थे कि समझ नहीं आता था कि ये क्या है। पूछा साहबा ने कि जब एक लॉन्डी ने किसी को जन्म ही दे दिया तो वो फिर लॉन्डी कैसे रही? कहीं से मुराद है कि औलादें इतनी नाफरमान हो जाएंगी कि अपने माँ बाप को ऐसे ट्रीट करेंगी जैसे उनकी वो लॉन्डी गुलाम है। आज आप देख लीजिए, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत होगी। इसको क्या कहते हैं? वहन। हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत। दीन अजनबी हो जाएगा। आज आपके अपने मुल्क में कोई शरई पर्दा कर ले, देखिए जरा क्या होता है। निकाब और उनके हिजाब खींचते देखें कि तुम्हें क्या हो गया। एक सिस्टर ने नॉर्वे में थी, क्लासेस ली, हिजाब शुरू कर दिया। बाद में कुछ माह में पाकिस्तान आने का प्लान बना तो खौफजदा थी कि मेरे रिश्तेदारों को मैं क्या कहूंगी, और जब यहाँ से गई तो फूट फूट के रो रही थी कि मेरे देवर ने मेरा हिजाब खींचा कि भाभी तुम क्या बन के आ गई हो। सास अम्मा अलग नाराज है कि मेरे बेटे को ऐसे वैसे जो तुम घर में भी मुँह छुपाती फिरती हो, जो ना खूब था वही खूब हुआ। इसी तरह से लोग बदल जाएंगे। बारिश बकसरत होगी मगर पैदावार नहीं होगी। कुस्तनतीनिया एक इलाके का नाम है, इसकी फतह होगी। रोमा फतह होगा। कुफार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। हर घर में फितना दाखिल हो जाएगा। ईसाइयों से मिलकर मुसलमान तीसरे मुल्क से लड़ेंगे, फिर इन्हीं ईसाइयों से जंग होगी। हो रहा है ये? कितनी दुनिया की मिसालें हैं। रूमी कसरते तादाद में बढ़ जाएंगे। दरियाए फरात से सोने का पहाड़ जाहिर होगा। ये भी होना है। ये जो आपको 90 समथिंग निशानियां ना, इसमें कुछ रह गई हैं, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। मर्द थोड़े और औरतें ज्यादा हो जाएंगी। मिस्र, शाम और इराक अपने पैमाने और खजाने रोक लेंगे। मौत की तमन्ना की जाएगी। बैतुल्ला पर चढ़ाई करने वाला लश्कर जमीन में धस जाएगा। एक कहतानी हुक्मरान होगा, एक जह जह नामी बादशाह होगा। अभी आने वाले दौर में होंगे। हैवानात और जमादात इंसान से हम कलाम होंगे। ये भी निशानी यानी ये नहीं, जानवर बोलेंगे, पौधे भी बोलेंगे। और ये जो साइंटिफिक तरक्की हो रही है इसमें भी ये हो रहा है। अब शजर और हजर पुकार उठेंगे कि मेरे पीछे यहूदी है, इसको मारो। ये बिल्कुल कुर्बे क़यामत के करीब है। मोमिन का हर ख्वाब सच्चा साबित होगा। अरब के दश्तों सहरा बागात में बदल जाएंगे। इसकी तो मैं भी गवाही दे सकती हूँ। अभी अल्लाह ने लास्ट मंथ में चार पांच मुल्कों से जाने का मौका दिया है। अब देखिए वहां खुश्की नहीं रही, सब्जा आ गया है, ये भी कयामत की निशानी है। मदीना वीरान हो जाएगा, ये भी होना है। इमाम महदी का जहूर होगा, खुरूजे दज्जाल होगा, नजूले ईसा इब्ने मरियम होगा, ये बड़ी निशानियां अब आ गई। आखिरी 10, अमन अमान का सुनहरी दौर आएगा, मशरिक मगरिब और जजीरतुल अरब में खसफ होगा, यानी जमीन खुलेगी और पूरी बस्ती दब जाएगी मट्टी में, हर तरफ धुआं छा जाएगा, सूरज मगरिब से तुलू होगा, फिर दाबतुल अर्स निकलेगा, हर बंदा मोमिन की रूह पामाल की जाएगी, यानी अल्लाह नेक लोगों को उठा लेगा, बैतुल्ला की हुरमत पामाल कर दी जाएगी, यानी ये बैतुल्ला भी गिरा दिया जाएगा, इसके नीचे खजाना वो लूट लिया जाएगा, जमीन पर सिर्फ बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे, और आखिर में फिर एक खौफनाक आग आएगी। अब देखिए 96 है, जिसमें आखिरी 10 जो है ना, ये कुर्बे कलामत की बड़ी निशानियां। अब आप मैं इस टॉपिक को सुनने के बाद क्या सोचें, आपका मेरा काम क्या है? आज हम यहाँ से कुछ प्रैक्टिकल टिप लेके उठते हैं, वो क्या है? नंबर एक, बी रेडी टू फेस अल्लाह। अगर मैं अपने रब का सामना करने के वक्त के करीब हूँ तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान सुनने के लिए, सीखने सिखाने के लिए आने वाले ऐसे ही होते हैं, लेकिन जरा सा अपने दिलों को चेक करें। देखिए नेक होना और चीज़ है, और कुरान पढ़ना और पढ़ाना भी और चीज़ है। मेरा कुरान पढ़ाना देखकर आप ये ना कि मैं बहुत नेक हूँ, अगर मेरी नेकी देखनी है तो मेरे साथ रह के देखें, मेरे से मामला करके देखें, मेरे से कोई लेन देन करके देखिए, मामला ठीक कीजिए, अपने घरों में खैर लाइए। माशाल्लाह अल्लाह ने आपको मुझे सहूलतें दी हैं, आसाइशें दी हैं, घर वाले भी अच्छे दिए हैं, इसको कैश कीजिए। आज से अपनी ज़िंदगी का एक गोल बनाएं कि मैंने आज से, अब देखिए ना, जब ऐसे भी जब साल नया शुरू होता है तो लोग कई नियतें करते हैं ना, और मुहासबा भी करते हैं, क्या खोया क्या पाया। चलिए दिसंबर जाने वाला है, क्या खोया क्या पाया। मैं आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी लेती हूँ, अपनी एज लिखे, छुपा लें, दूसरों को ना बताएं, कोड वर्ड रख लें, और ये मुझे पता है कि आप में से ज्यादा भी जिसकी उम्र है ना वो 30+ है, क्योंकि औरतें 30+ से ऊपर होती नहीं है, मसलन 30+10, अब ये तो नहीं कोई पूछ रहा ना, 30+10 यानी 40, और 30+30 और 30+70 है तो सच के 30+ हो, झूठ तो नहीं बोलते, लेकिन आप लिखिए। पहले तो दुआ दूंगी अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आफियत वाली जिंदगी दे। अब इस उम्र के ऊपर एक फिगर लिखिए, 63। अब 63 से आप नीचे हैं तो माइनस कीजिए, आप 40 की हैं तो 23 पीछे आएगा, और अगर आप 60 के हैं तो सिर्फ 3 साल आपके हाथ में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्रें मेरी उम्र के बराबर है, 63 डेड लाइन है, इस पे ऊपर जो चल रहा है ना ये बोनस है, ये अल्लाह की रहमत है। हदीस में आता है जिसको अल्लाह ने 60 साल की उम्र दी उसका क्यामत के दिन उजर नहीं चलेगा। सूरह फातिर में आता है अवलम नुअम्मिर को माँ यतज़क्कर फी, क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि तुम उसमें कुछ नसीहत पकड़ते। तो अपनी ज़िंदगी से लीजिए, घरों के अंदर मोहब्बत का माहौल लाइए, 5 वक्त की नमाज, मस्जिदें हैं, और आमतौर पे वो मस्जिदें हैं जो जुमे के दिन ओवरफ्लो होती हैं, उसी दिन असर में 2-4 सफ़ें भी नहीं होती, फजर में तो शायद और भी कम। तो अपने बेटों को, बच्चों को, पोतों नवासों को पक्का नमाजी बनाइए। जजाकल्ला खैर, अल्लाह आपको बरकत दे। चलिए छोटी सी दुआ करते हैं, या रब्बी लकल हम्दु कमा यनबगी लिजलाली वजहिक वअज़ीमि सुल्तानिक, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस, अल्लाहुम्मा स्तुर औरातिना व आमिर औरातिना, رب ارحم ہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس، ہم تجھے تیرے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں، ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں بدل دے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں سکون اور اطمینان ڈال دے، یا اللہ ہمارے گھر والوں پہ اپنی رحمتیں فرما، یا اللہ جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ان کا قبول فرما، اور جو ہماری بہنیں آئیں ان کا آنا بھی قبول فرما، اور یا اللہ جو بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، جو یہاں اس کام کے معاونین ہیں، جو اس میں اپنی جان مال وقت لگاتے ہیں، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، یا اللہ کبھی خیر سے ہمیں محروم نہ کرنا، یا اللہ ہم سے دین کے وہ کام لے کہ جو رہتی دنیا تک موجود رہیں، ان کے اثرات نکلیں، ہمارے پیارے جو تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما، یا اللہ ہم کب تیرے پاس آ جائیں ہمیں نہیں پتہ، یا اللہ وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو جب ہماری تیرے ساتھ ملاقات ہو، یا اللہ تیری ملاقات کا انتظار لگا دے، یا اللہ موت کے وقت جائے یہ تو ہن نفس المطمئنہ ارجی لربی کی را دیا تب مر دیا، یا اللہ یہ پکار ہمیں بھی سنوا دینا، یا اللہ ہماری روح اچھلتی کودتی جسم سے نکلے، یا اللہ اس سے پہلے میں ساری ذمہ داریاں پوری کروا دینا، یا اللہ کسی کا ایک پینی ایک روپیہ بھی قرض نہ ہو ہمارے سر پہ، یا اللہ کسی کا کوئی حق نہ ہو، یا اللہ ہمارے گھر والے ہمارے رشتہ دار، یا اللہ ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، یا اللہ اگر کسی کا کوئی لین دین اور بھول چکا ہے تو اپنی رحمت سے یا اللہ ہمیں یاد دلا دے اور ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہیں بن بیاہی ان کے نیک جوڑ ملا دے، اور یا اللہ جن کی شادیاں ہوئیں ان کے شوہروں کو شر سے بچا، شوہر بیوی کے دلوں میں محبت ڈال دے، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم شادی ویسے نہیں کر رہے جیسے کرنی ہے، لیکن یا اللہ ہمیں اچھی توفیق بھی دے اور ہماری بچیوں کو تکلیفوں سے بچا لے، یا اللہ تو کسی چھوٹی سی بات سے خوش بھی ہو جاتا ہے اور تو کسی چھوٹی سی بات سے ناراض بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اس چیز کا یقین دلا دے، یہ جو خواہش دل میں لیے بیٹھے ہیں، جو کہنا چاہ رہے ہیں اور کہہ نہیں پا رہے، یا اللہ ان کو وہ بھی عطا فرما، ہمارے استادوں پہ رحم فرما جنہوں نے ہمیں ایک لفظ بھی سکھایا، یا اللہ ان کو بھی بہترین اجر عطا فرما، اور اب ہماری کوئی اچھی بات ہے تو یا اللہ ان کو ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا، اور یا اللہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے بیشی ہے تو یا اللہ اس کو دور کر دے، اس سارے کام کو اپنی رحمت سے پورا فرما، سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔